तो इंशाल्लाह ताला हम इसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। अगर बुक को अगर आप देखेंगे तो बुक के अंदर पेज नंबर 45 पे है ये टॉपिक कि मुसीबतों की आमद के असबाब। आइए थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। किताब व सुन्नत से ये बात मालूम होती है कि बंदों पर मुसीबतें दो असबाब की बुनियाद पर आती हैं। असबाब किसको कहते हैं? सबब, रीज़न, वजह क्या है। पहलिया सबब क्या है मुसीबतों के आने का? इम्तिहान और इब्तला, यानी हम पे मुश्किलात क्यों आती हैं? अल्लाह सुबहाना ताला हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हमारी आजमाइश करना चाहते हैं। और दूसरी जो वजह है वो क्या है? गुनाहों की सज़ा के लिए। अपने लफ्ज़ों में ये कह लीजिए कि अंबिया कराम और नेक लोग और जिनको भी अल्लाह ताला ने अपना क़ुर्ब अता किया, उन पे जितनी भी मुसीबतें आईं, नबियों पे सबसे ज़्यादा आईं, अभी हम हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, वो क्यों आईं? अल्लाह ताला उनका इम्तिहान ले रहे थे। बड़े बड़े अंबिया कराम की आजमाइशें आई थी इसमें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में डाल दिए गए, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल की बीमारी का शिकार हुए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बार बार बेटों के गम मिल रहे हैं, बेटों की जुदाई का गम छोटा गम तो नहीं होता। इसी तरह आप देखिए कि हज़रत नूह के सामने उनका बेटा दुनिया से जा रहा है, हज़रत लूत की बीवी नहीं मान रही, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ऊपर कोई ईमान ही नहीं लेके आ रहा। तो ये मुसीबतें थी ना, तो ये पहली कैटेगरी में आती हैं मुसीबतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आईं वो क्यों आईं? अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लिया था कि ये इस वक्त इस सारी मुश्किल से कैसे निबटते हैं, क्या हाल और हालात होते हैं। ठीक है, तो नेक लोगों पर जो चीज़ें आती हैं वो इम्तिहान और इब्तला होता है, और गुनाहगार लोग, जो लोग अल्लाह की नाफरमानियों के साथ जीते हैं, उनके लिए भी मुसीबत एक रहमत है। क्या? कि अल्लाह उनको गुनाहों से पाक करता है। अगर मुसीबत ना आए, मुश्किल ना आए, तो इंसान को अल्लाह की ज़रूरत ही ना पड़े। मैंने अलबिदाया और नहाया में ये बात पढ़ी थी कि फिरौन को अल्लाह ताला ने 300 साल या 400 साल की उम्र दी, जिसमें से 300 साल तो वो हुक्मरान रहा, और इस सारे अरसे हयात के दौरान उसको एक दफ़ा भी दर्द सर भी नहीं हुआ। क्यों? कि अगर कभी उसको सर दर्द ही हो जाता ना, तो उसको पता चल जाता कि मेरे ऊपर भी कोई हस्ती है जो मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम कर रही है, और हो सकता है उसको ईमान मिल जाता। चूँकि हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से हुई, उस जो सोचता था कर लेता था, उसी ने उसको फिरौन बना दिया। याद रखिएगा, ये ज़िंदगी का मामला है। और आइए ज़रा पहली वाली किस्म को ज़रा डिटेल से देखते हैं कि पहला सबब क्या है कि आजमाइश के तौर पर आना। अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा 155 में फरमाया, वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यि मिनल खौफि वल जूइ वनक्सि मिनल अमवाली वल अन्फुसि वस्समराति वबशिरिस साबिरीन। यकीनन हम तुम्हें खौफ और भूख और मालों और जानों और फलों की कमी में से किसी न किसी चीज़ के साथ ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। आप में से मेरा हाल है कोई सिस्टर ऐसी नहीं होगी कि जो ये आयत ना जानती हो। बिल्कुल शुरू में ही आ जाती है दूसरे पारे के अंदर ये आयत। हम सब को क्या बताती है कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आजमाइशें तो आएंगी। अगर आप एक एक चीज़ की डिस्क्रिप्शन देखें, वला नबलू वन्नकुम, अगर आयत पे गौर करें ना, वा और ला अलबत्ता, नबलू वन्नकुम, अगर मैं इस सोच से इस तरह पढ़ूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें ताकीदें हैं। नून हम, अपने लिए इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ये भी किया जा सकता है, बलऊ हमने आजमाया, अल्लाह ने अपनी तरफ लिया कि हम ज़रूर, या बलू वन्ना, ये जो वन्ना में नून के ऊपर शद है ना, ये शिद्दत की है, तशदीद है, यानी इस एक लफ्ज़ में वाला नबलू वन्ना कुम में इतनी ताकीदें हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं श्योरली वी विल टेस्ट यू, श्योर शॉर्ट ये होगा, और उर्दू में हम कहते हैं ज़रूर बिल ज़रूर हम तुमको आजमाएंगे, ये होगा, ये नहीं हो सकता कि नहीं, तुम्हें आजमाया जाएगा। और कुम से मुराद सारे मुसलमान, इंसान भी। और याद रखिए एक बात बहुत अहम है आपके मेरे लिए कि दुनिया में मोमिन पे आजमाइशें ज़्यादा आती हैं काफिर की नस्बत, ये अल्लाह ताला का एक कानून है। आप इस सारे को पढ़ने के दौरान आप इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह सुबहाना तला की सुन्नतें भी समझ आएंगी। फिर आ गई बात कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, क्या मतलब कि आप अमूमी तौर पे देखते हैं कि नॉन मुस्लिम लोग जो होते हैं उनके ऊपर मुश्किलें कम आती हैं, रंग तो पहले ही उनका गोरा है, काले नहीं हैं, मुल्क भी उनके साफ है, और खूबसूरती भी वहाँ ज़्यादा है, और खाना पीना उनका बड़ा फ्रेश है, मिलावट नहीं है। कभी कभी ये चीज़ें सोच देखकर इंसान परेशान हो जाता है कि शायद अल्लाह इनसे खुश है तभी तो ये सब कुछ दे रहा है। तो मत सोचिए, क्यों? अल्लाह सुबहाना ताला उनको दुनिया में देना चाहता है। लिख लें ये बात, मुसलमान या मोमिन को उसकी नेकियों का अजर ज़्यादा आखरत में मिलेगा, काफिर फाजिर गैर मुस्लिम को उसकी नेकियों का सारे का सारा अजर दुनिया में मिलता है। ये जो दुनिया में इनको अगर खुशी मिलेगी या सुकून है, अंदर की हालत तो हम नहीं जानते, वो तो आगे बात करेंगे हम इंशाल्लाह, कि तकलीफ मोमिन पे भी आती है, तकलीफ काफिर पे भी आती है, लेकिन मोमिन तकलीफ में भी खुश होता है। काफिर पे तकलीफ आए तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो मायूस हो जाता है, वो कनूत के दर्जे पे पहुंच जाता है। तो अल्लाह ताला कुफार को दुनिया में उनकी नेकियों का अजर देते हैं। जैसे हम आप देखते हैं कि इनमें बहुत खूबियां हैं, अगर दुश्मन की बुराई का तذکرہ ना किया जाए तो ये ज्यादती होती है। आप देखिए ये लोग झूठ नहीं बोलते, इनके अंदर इंसाफ है, इनके मुल्कों में अदल है। वो इस्लाम दुश्मनी हो वो एक अलग बात है, लेकिन आम तौर पे देखिए तो आप गैर मुस्लिम मुल्कों के अंदर हर चीज को ऑर्गेनाइज देखते हैं ना, सोशल वर्क भी है और अगर हेल्प भी है और लोगों को पूरी चैरिटीज देते हैं, तो क्या इन नेकियों को अल्लाह ताला जाया कर दे? जाया नहीं करता, अल्लाह ताला दुनिया में देता है, अल्लाह आदिल है, वो चाहे तो जाया कर दे लेकिन अल्लाह किसी का अमल जाया नहीं करता। इसके बरक्स जो मोमिन होते हैं बाज़ दफ़ा वो सब कुछ अच्छा भला करके भी आजमाइशों में पड़े होते हैं, क्यों कि उनके अंदर जो बशरी कमजोरियां हैं ना, हम सब में होती हैं। देखिए इंसान इंसान है, फरिश्ते नहीं हैं। हत्ता के नबी सल्लम के साथ जो गिरोह था लोगों का, जो आपके दीन के साथी थे, वो भी कोई फरिश्ते नहीं थे। गलतियां उनसे हुई, खताएं उनसे हुई, लग्जिशें उनसे हुई, लेकिन दिल खूबसूरत थे, तो अल्लाह ने उनके लिए कह दिया कि रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा। तो अल्लाह ताला बंदे की जो छोटी बड़ी बातें हैं ना, उसको दूर करने के लिए वला नबलू वन नको। फिर आप देखें अगला लफ्ज़ है कि बिशयिन, थोड़ा सा। शयिन के लफ्ज़ को अगर आप देखें ना तो ये नकरा में है, वेरी फ्यू, वेरी लिटल, बहुत थोड़ा सा, सम ऑफ, यानी ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो हम आजमाएंगे। मिनल खौफ, ये जो मिन है ना अरबी ज़बान में, तबईज़, तबईज़ कहते हैं बाज, सम ऑफ, यानी हर वक्त नहीं तुम्हें आजमाएंगे लेकिन कुछ वक्त तो देंगे। मिनल खौफी वल जूई, खौफ आएगा। अब खौफ किस किस का हो सकता है? जंगों का खौफ, दुश्मनों का खौफ। जिस वक्त ये आयतें उतर रही थी सहाबा कराम का, उस वक्त वो दौर चल रहा था मदीना में कि जरा सा खटका भी होता था तो कहते थे जंग लग गई, हथियार हथियार की आवाजें आती थी, रात को सो नहीं पाते थे। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, कोई है जो आज की रात मेरे घर का पहरा दे और मैं सुकून से सो सकूं? तो खौफ तो आता है। आज भी आप देखिए कि सच्चे मोमिन मुत्तकी, इसके बावजूद उनको दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के खौफ जो हैं वो दिखते हैं, कहीं जंगों का खौफ, कहीं इंसान के हकूक को माल किए जाने का खौफ होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तो होगा, खौफ तो साथ आएगा। फिर वलजू, भूख, तंगी, तुर्शी, गुरबत इसमें आती है। सहाबा कराम बेचारों ने तो पेट भर के खाना तब खाया जब खैबर की जंग हुई और उसका माल गनीमत आया। और अगर आप तबूक के सफर को पढ़ लीजिए किताबों में, तो एक खजूर सारे दिन में खाते थे, चूस चूस के, चूस के उसकी गुठली खत्म करते हैं। हजरत आयशा से जब किसी ने ये बात सुनी कि सिर्फ एक खजूर पूरे दिन में मिलती थी, तो कहा कि गुजारा क्या होता था, वो एक खजूर क्या करती होगी आपका? कहने लगी ये हमें उस दिन पता चला जिस दिन वो खजूर भी खत्म हो गई। चारों नाचार ऊँटों को ज़िबा करके उनके पेट के अंदर एक थैली होती है पानी की, वो पानी पीना पड़ा, ओझरियों के अंदर का पानी पीना पड़ा, दरख्तों के पत्ते खाने पड़े, बेरियों के पत्ते खाए। साहबे कराम कहते हैं कि हम कज़ाए हाजत में जब फारिग होते थे तो जानवरों की तरह मेंगनियाँ हमारे जिस्म से निकलती थी, क्योंकि बकरियाँ भी पत्ते खाती हैं तो हमने भी पत्ते ही खाए, तो जो हम खाते थे वही खाते हैं, तो वही अंजाम उनका था जो हमारा हुआ। यानी भूख सही, मैंने आपने कहा सही, वल्लाही मैं सोचती हूँ कि आज के दौर में हमारा तो दीन का काम भी खाने पीने के अलावा नहीं खत्म होता। शादी हमारी खाने पीने से नहीं खत्म होती, मिलाद हमारे खाने पीने के बगैर नहीं है, खत्मों में हम खाते पीते हैं। कल शाम भी एक जगह थे तो मैंने उन्हें कहा कि कितना खर्चा होता है, जितना भी खर्चा हुआ खा पी के तुमने खुद ही चले जाना है, हमने ये पैसा किसी नॉन मुस्लिम के दीन तक पहुंचने का कोई जरिया बनाया, इससे इस्लाम को क्या दिया? हम तो अभी उसी स्टेज से गुजरे हैं कि खुद ही अपने ही लाड और नखरे देख रहे हैं, हमने गैरों पे इस्लाम पे माल कहाँ खर्च करना था। लेकिन इट्स वेरी बिग ट्रू कि उस दौर में भूख सहनी पड़ी लोगों को, लोग भूखे रह रह कर काम करते थे। और याद रखिए जितने पेट भरे होते हैं उतना ही नखरे ज़्यादा सूझते हैं, उतनी ही तनकीद ज़्यादा होती है। आज अगर हमें भी ज़रा से फाके सहने पड़े तो हम भी थोड़े से दुरुस्त हो जाए, लेकिन बहरहाल इस्लाम के रास्ते में भूख तो आती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी नहीं ज़रूरी होता कि भूख लगे और आपके पास खाना नहीं है इसलिए नहीं खा रहे, वक्त ही नहीं होता। मकसद की धुन देखिए, अबू हुरैरा की भूख याद कर लीजिए, इल्म की तलब में नबी के पास वो जो साहबे सुफा थे कह लीजिए कि उसमें शामिल किए गए। और बहुत कम लोग जानते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा इतने फेमस और इतने मशहूर सहाबी और सबसे ज़्यादा हदीसें उन्होंने रिवायत की थी। कैसे? खैबर की जंग के बाद आपको मिले। मुसलमान हो चुके थे कहीं दूर, लेकिन खैबर के मौके पे अल्लाह के नबी को मदीना में मिले। कितने साल उसके बाद अल्लाह के नबी दुनिया में रहे? सिर्फ 3 साल। 7 को वो खैबर फतह हुआ, 10 में अल्लाह के नबी दुनिया से जाते। सिर्फ 3 साल में अबू हुरैरा ने इल्म का इतना खजाना कैसे लिया? इल्म के मोती लिए फोकस्ड होकर, डेडिकेशन के साथ। शादी नहीं की अल्लाह के नबी की जिंदगी में कि कहीं बीवी बच्चों के कामों में उलझ गया तो मुझे इल्म नहीं मिलेगा। और हाल ये था कि कमाने के लिए नहीं जाते थे। उनकी हदीसें अभी चंद दिन पहले मैंने वहां बुखारी में पढ़ाई, तो वो कहते हैं कि जब मैं कोई मसला लोगों को बताता था तो लोग कहते थे हमने तो ये बात कोई नहीं सुनी। तो फिर मैं कहता था कि हमारे अंसारी भाई तो खेतीबाड़ी में लग गए और मुहाजरीन तो बाजारों में भावताव करते रहे, और मैं अबू हुरैरा नबी का पल्लू थाम के उनके पीछे फिरता रहता था। खाने के लिए नहीं निकलते थे कि कहीं पीछे से अल्लाह के नबी कोई बात कह दे और मैं महरूम हो जाऊं। हालांकि वो सारी बातें उनको मिल सकती थी, लेकिन वो कहते थे हमने ब्राह रास सुननी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से सुननी है। और हाल ये होता था कि भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे। और कहते हैं कि लोग समझते थे कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ है, यानी जिसमें बंदे को होश नहीं आती, लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं लोगों को कह पाता था कि लोगों मैं बीमार नहीं हूँ, मैं भूखा हूँ। और वो वाक्य आपने सुना होगा उनका, कैसे भूखे थे और बाहर निकले, आगे से हजरत उमर को आता देखा। कहने लगे मैंने सोचा कि उमर से मैं एक मसला पूछूं, शायद मुंह से नहीं कह पाए कि भूखा हूं। तो सूरह दहर की एक आयत पढ़ के कहने लगे उमर इस आयत का क्या मतलब है? और उसमें लफ्ज क्या आता है, युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही, कि वो अल्लाह की मोहब्बत में दूसरों को खाना खिलाते हैं। कहा हजरत उमर ने मुझे उस आयत की तफसीर करानी शुरू कर दी, वो तो मुझे सारा पहले ही आता था। यानी उमर नहीं समझ सके कि मेरा इशारा यह है कि उमर मेरे चेहरे को देखे और मुझे पूछे तुम्हें कुछ खाना है तो मैं कह दूं मैं खाना है। खैर हजरत उमर तो पढ़ा के आगे चले गए। आगे गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप बेहतरीन उस्ताद थे, चेहरों से पहचान लेते थे कि इस वक्त शागिर्द को क्या चाहिए और इसको किस चीज की तलब है। तो आपका चेहरा देखा तो कहा कि अबू हुरैरा भूखे लगते हो, आओ मेरे साथ। घर ले गए। वहां गए तो किसी ने दूध का एक प्याला तोहफे में अल्लाह के नबी को भेजा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वल्लाही मैं इतना भूखा था कि मेरा दिल चाहे कि अल्लाह के नबी कहे कि अबू हुरैरा उठा प्याला और पी ले तो मैं सारा पी लूं। लेकिन इम्तिहान तो देखिए, और याद रखिए जो सही उस्ताद होते हैं वो इम्तिहान लेते हैं। आज तो इम्तिहान कौन ले और कौन दे वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू हुरैरा जाओ सारे असहाबे सुफा को बुला कर लाओ। कहा भी अबू हुरैरा का जो पहले ही भूखे हैं। कहते मैंने सोचा ये सारे आ जाएंगे तो ये एक दूध का प्याला किसको मिलेगा, पर जरूरत नहीं थी। समय न वत आना, यही असल में सहाबा की कामयाबी थी कि वो नबी की जुबान के इशारे को हुक्म समझते थे। कहा अच्छा अल्लाह के नबी। जब बुलाया 70 के करीब लोग आके बैठ गए। कहा सबको एक दायरे में बिठा दो, अब ये भी इम्तिहान है। अबू हुरैरा की नजर तो उस प्याले पे ही थी ना कि इसमें से मुझे कितना मिलना है। फिर अबू हुरैरा का तीसरा इम्तिहान लिया। अबू हुरैरा उठाइए प्याला और सीधे हाथ से पहले साथी को पिलाना शुरू कर दें। अल्लाह अकबर, जरा सोच के देखिए, इल्म ऐसे नहीं आता। पेट भरे के साथ इल्म नहीं आता, मर्जियों के साथ इल्म नहीं आता, अपने नफ्स को मोटा कर लेने को, अपनी बात को सामने करने से बात नहीं आती। मिनल जू, ये भूख सही। अल्लाह का हुक्म देखिए, और अबू हुरैरा को जो इनाम क्या मिला कि पहले शख्स से लेकर आखिरी सारे सर्कल वालों ने दूध पी लिया, और कहते हैं कि प्याले में इतनी भी कमी नहीं हुई कि मैं कह सकूं कि किसी ने पिया। ये मुजजा था अल्लाह के नबी को, अल्लाह ताला ने मुझसे दिया तो आज भी ये मुझसे मिल जाते उम्मत को अगर उम्मत में ये समावतात होती। आखिर में कहते हैं कि मैं और नबी सल्लम बच गए। फिर अल्लाह के नबी ने मुझे कहा कि अबू हुरैरा अब तुम पियो। मैंने कहा नहीं अल्लाह के नबी आप पी लें। कहा नहीं तुम पियो। कहते हैं मैंने उसको पिया। फिर वो दूध जब मैंने पिया तो मेरे जिस्म में गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्याले में कुछ कमी नहीं हो रही। अल्लाह के नबी कहते अबू हुरैरा फिर पियो। कहते हैं मैंने फिर पी लिया। फिर तीसरी दफा कहा पियो, और कहने लगे अल्लाह के नबी ने जब मुझे कहा अबू हुरैरा और पियो तो कहा अल्लाह के नबी अब तो लगता है मेरे नाखूनों में से भी दूध टपकने लगेगा। सुभान अल्लाह, बरकत देखिए। और उसके बाद कहते हैं कि जब मैं खूब पी चुका तो सबका बच्चा हुआ दूध नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पिया। वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जूई, थोड़ा सा पेट के तकाजों से कम हो। आज हम माएं भी हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां हैं, वल्लाह ही हमने अपनी नस्लों को खिला खिला के मोटा कर दिया। मिन्नतें तेरी करके हमने बिगाड़ दिया। आज माँ का सबसे बड़ा गम क्या है? गरम रोटी खाना। शोहर साहब क्यों नाराज है, क्यों नहीं पढ़ने जाने देते? नहीं, रोटी गरम नहीं फिर पकती। बच्चों पे हमें आता है, हाय बेचारे ब्रेड खा रहे हैं 2 दिन से, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी भूख होगी तभी तो उनको खाने की कदर होगी। जब हर रोज अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, कदर कहाँ रहती है? एक दिन फाका होगा तो फायदा होगा। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहती कि हम भूखे रखें, लेकिन कुछ भूख तो देनी चाहिए। बहुत ज्यादा हर वक्त खाने पीने की फिक्र करना कराना, ये भी इस्लाम में पसंदीदा नहीं। इससे भी इंसान जो है वो अपने असल मकसद से दूर हो जाता है। फिर इसके बाद आप देखिए, वह नक्स मिनल अमवाल, मालों के अंदर कमी आएगी। ये कैसे आती है? आपको पता है कि सहाबा कराम की जायदादें थी, घर भरे पड़े थे उनके। अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको दुनिया की भी दौलत दी थी, इल्म की भी दौलत दी थी, दीन की भी दी थी, लेकिन इस्लाम के नाम पे क्या हुआ? अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम आपने कई बार सुना होगा। उनके हालात ज़िंदगी पढ़ लीजिए, हालात सहाबा के दरख्शा पहलू बुक में मैंने खुद भी पढ़ाया उनके बारे में। इतने दौलतमंद थे, लेकिन जब हिजरत करके आने लगे तो बीवी बेटा और दौलत सब लोगों ने ले ली। एक एक दावेदार आता गया, ससुराल वाले आ गए, कहने लगे ये हमारी ये बेटी है, तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि इसको लेके दर दर फिरो, इसको वापस कर दो, ले लीजिए, ले गए, खत्म हो गई बात। फिर आगे थोड़ा गए तो बेटा अपने ही माँ बाप आगे कहने लगे ये पोता हमारी नस्ल है, हमें दीजिए, बेटा भी दे दिया। और निकले आगे तो भाई आगे कहने लगे ये माल तो मिलके कमाया, तुम जाते हो जाओ माल दे जाओ को पकड़ो। ये आसान है कहना, करना बहुत मुश्किल है। जब हमारे माल पे चोट पड़ती है, जब हमारे मादी वसाइल पे और हमारे जाती फायदों पे चोट पड़ती है ना, तब दीन पे कायम रहना, ये सिर्फ जिस पे अल्लाह राजी हो, जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, सहाबा पे अल्लाह का ये सबसे बड़ा फजल था कि जब उनको कुर्बानियां देनी पड़ती थी, अमली तकाजे दीन के पूरे करने पड़ते थे, अल्लाह की मोहब्बत और ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये तकाजे पूरे करने में जब अमली कुर्बानियां देनी पड़ती थी ना, वो उस वक्त जमते थे। ये फजल है, यही है सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अभी रूहुल कुरान में अनअमत अलैहिम की पहली दफा ये तफसीर दी है लोगों को कि किसी पर अल्लाह का इनाम क्या है कि उसके लिए नेकी करना आसान हो जाए। फजर के लिए उठना आसान हो गया, आप इनाम वाले लोग हैं। इल्म के लिए घर से निकलना आसान हो गया, आप इनाम याफ्ता लोग हैं। अल्लाह के लिए माल पानी की तरह बहाना आसान हो जाए, आप इनाम वाले लोग हैं। वरना अपने नफ्स और अपनी ज़ात पे तो लोग लगाते हैं। अब्दुर्रहमान के लिए सब आसान था, हत्ता के जब मदीना में आए वापस तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुर्रहमान क्या बचा कर आए? कहा अल्लाह के नबी ये तन के कपड़े, बाज़ कहते हैं तन पे कपड़े भी पूरे नहीं थे। और आपने कहा कि अब्दुर्रहमान तूने नफ़े का सौदा किया, कदर बे हल भई, तेरी ये तिजारत तुझे फायदा दे। और अल्लाह ने थोड़े ही अरसे में फिर दुनिया में माल दे भी दिया। याद रखिए कि अल्लाह के रास्ते में आपका कुछ जाता नहीं है। आप किसी इंसान पे 100 लगा दें, वो 101 लगाना चाहेगा। हम छोटे इंसान हो के किसी का जरा सा एहसान नहीं रखते अपने ऊपर। कोई एक वक्त खाना खिलाए हम कहते हैं अब हम भी खिलाएंगे। कोई 1 रुपए की चीज देगा आप कहेंगे हम 1.25 की जरूर देंगे, जो दे सकते हैं वो जरूर देंगे, करते हैं ना। तो क्या अल्लाह रखेगा? अल्लाह कभी नहीं रखता। तो ये जो नक्स मिनल अमवाल है, अल्लाह ताला के रास्ते में माल देने पड़ते हैं, वक्त देना, ये कभी नहीं रहता, बल्कि ये क्लॉट होता है, आगे से निकालें ताकि फ्रेश ब्लड पीछे से आए। तो ये अल्लाह के रास्तों में होगा। मुसअब बिन उमैर का नाम आपने सुना होगा कि जब मुसअब बिन उमैर की दुनिया से रुख्सती का वक्त आया तो जिस्म पे चादर भी पूरी नहीं थी। सहाबा ने अल्लाह के नबी से कहा कि अगर हम मुसअब का सर छुपाते हैं तो उनके पाँव खुल जाते हैं, और पाँव छुपाते हैं तो सर खुलता है। कहा अच्छा सर छुपा दो, पाँव पे अजहर घास डाल दो। जरा सोचिए हम होते तो आज इतना बड़ा फतवा दे आते, देखो देखो कफन ही नहीं नसीब हुआ। हालांकि आपने फरमाया कि मुसअब वो जवान था कि जब खूबसूरत कपड़े पहनकर अच्छी सवारी पे निकलता था मक्का की गलियों में तो लड़के लड़कियां उसको देखा करते थे। और एक वक्त ऐसा आया इस्लाम में कि मुसअब जब गुजरे तो जिस्म पे कपड़े को जोड़ने के लिए बटन नहीं थे, कांटों के साथ कपड़े को जोड़ा हुआ था। वला नब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफी व नक्स मिनल अमवाल, जू, ये सब होगा। आज के मुसलमान को ये सबक दिया जा रहा है, अगर तुमने बेहतरीन करामत नस्लें पैदा करनी है तो तुम्हें अपने बच्चों को जरा सा हाथ खींच के पालना पड़ेगा। हर बात पूरी करना, हर तमन्ना पूरी करना, उनकी मुंह की बात को हटाना ही ना। याद रखिए कि ये नस्लें बेकार हो जाएंगी। अल्लाह ने बनी इसराइल को 40 साल तक सहरा में डालकर सहरा नवर्दी कराई थी, वो फिरौन की गुलामी में बिगड़ चुके थे। नवाबों के गुलाम भी तो नवाब ही होते हैं ना, अल्लाह ने उनको वहां रखा, फिर वहां से एक नस्ल उठी जिसने बैतुल मकदस को और यरूशलम को फतह किया। आज इस वक्त जो हमारा स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है, माजरत के साथ माओ के साथ, लेकिन आज जो माँ बाप का स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है अमूमी तौर पे, वो ऐसी नस्लें तो नहीं पैदा होंगी जिसमें सलाहुद्दीन अयूबी और मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग आएंगे, जिनको शायद चार सहाबा के नाम भी ना आते हों, जो कभी एक वक्त भूखे ना रह सके हों, जिनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वो लोग काम के नहीं होते। तो मुसलमानों को अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हें कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। फिर आप देखिए वल अनफुस जाने भी जाती हैं, सहाबा को कितनी चोटें पड़ी, बिलाल ने अपने बदन पे मार खाई, कोयलों पे लिटाए गए, खबाब बिन अरत किस तरह से अपने जिस्म पर इस तरह की तकलीफों के निशान दिखाया करते थे कि जो चीजें उनके लिए कल बाद में एक जरबुल मिसल चीज बन गई, ये जानों के माल होंगे। आज हमारा हाल क्या है कि हम तो इस्लाम की वजह से जरा सी बात नहीं सुन सकते, हमें तो अपने ही कह दें ना कि ये मौलवी लग रहे हो और ये बहुत ही दर्स वाली लग रही हो और स्काफ पहन के तुम उम्र से बड़ी लग रही हो, तो हम छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। हम कहते हैं छोड़ो छोड़ो, वैसे ठीक है नमाजें हम पढ़ते जाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई इस्लाम की वजह से रिजेक्ट कर दे या आउटकास्ट कर दे तो फिर हम नहीं बचेंगे। तो याद रखिए कि ये बात हमारे मुसलमानों को याद रखनी चाहिए कि इस्लाम अपनी कीमत लेता है, दुनिया में आजमाइशें आएंगी तो होगा, और वह समरात फलों में भी कमी होगी। इसकी मिसाल तो गजवे तबूक में देखिए, खड़ी फसलें तैयार थी, सारे साल की मेहनत हाथ में आ जानी थी अगर सहाबा निकल पड़ते, लेकिन निकले, ये नहीं कहा कि अभी ठहर जाएं। आप देखिए कि जिन्होंने भी आप में से सूरत तौबा पढ़ी है उनको गजवे तबूक अच्छी तरह याद होगी, अल्लाह के नबी का सरासर अपना फैसला था कि हम निकलेंगे, हिरकल आ नहीं गया था, सिर्फ धमकियां दे रहा था कि मैं आ जाऊंगा, कहा तुम कब आओगे, हम आते हैं तुम्हारे पास। सहाबा 10 मशवरे दे सकते थे नबी सल्लम को, जरा तो ठहर जाए, 2 माह तो ठहर जाए, जरा फसल काट के साल का गल्ला अनाज तो डाल लें, खामोश समय न बताना। और कितना डांट और कितना एताब नाजिल हुआ है, सूरह तौबा पढ़ के देख लीजिए, मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह, तुम्हें हो क्या गया है जब तुम्हें अल्लाह के रस्तों में निकलने का हुक्म दिया जाता है, साकल तुम्हें ललर्दी, तुम्हारे पांव जमीन से जुड़ जाते हैं। असल बात यह क्या, रदी तुम बिल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी में रीझ गए हो, वरना अल्लाह का सौदा तो बड़ा सस्ता है, तो नहीं निकलते तो ना निकलो, इल्ला अन तनफिरू, अल्लाह एक और कौम को ले आएगा। तो याद रखिए ये एक आयत जो है ना, ये नबी के पूरी जिंदगी के खुलासे की आयत है। तकलीफें आएंगी, आजमाइशें आएंगी, आज हमें भी आ रही हैं, लेकिन हमें इसमें अपने आप को चेक करना है कि हमारी गलती क्या है। हम हर वक्त तस्वीरें शेयर करने को तैयार हैं, वहां मुसलमानों पे ये मुसीबत टूट रही है, वहां ये हो रहा है, पहले तो दर्द मंदी से करते थे, अब तो कहते देखो देखो मैंने सबसे पहले मैसेज दिया है, लेकिन ये नहीं सोचते कि इन सारी चीजों के बाद होता क्या है, अल्लाह सुबहान तआला ये सब कुछ क्यों करते हैं। बशर साबरीन, तकलीफें दिखाकर आजमाइशों में डालकर अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं कि कौन जमता है। मसला आप देखिए कि अब हम इस बात को आज पढ़ रहे हैं ना कि इंसान पर पहली किस्म की जो तकलीफें आती हैं वो इसलिए आती हैं कि इंसान को अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद करें। आज हम मुसलमान हैं, अगर हम मुसलमानों के हालात पे गाइडलाइन ना लें तो मेरा लिए ये मौजू मुख्तसर रहेगा। बस आज आप देखिए कि जहां बात होगी एंटी इस्लाम बात होगी। दुनिया में कितने मजहब हैं, हजारों मजहब हैं, कभी आपने उनकी खबरें सुनी? एक मुसलमान घर के कमरे में बैठकर बीवी को मारता है तो पता नहीं वो कहाँ से खबर जो है वो फेसबुक पे पहुंच जाती है और वहां से बीबीसी पे चली जाती है। और जो औरतें हो सकता है कि कई शराबी वेस्ट में अपनी बीवियों को मार कूट के सोते हैं उसकी खबर कौन देता है? वहां एक शख्स मारा जाता है तो सारी इंटेलिजेंसिस हर लाइन में आ जाती हैं और अब दूसरों की बड़ी बड़ी बातें नहीं पता चलती। ये सब आजमाइश है, आज मेरी आपकी आजमाइश है। और मैं फिर आपको कहूंगी कि हमें हक बात करनी है। हम दुनिया के जिस खित्ते में बैठे हैं, आप अगर यहाँ हैं, मैं किसी और मुल्क में हूँ और इस वक्त मेरे हाले सैकड़ों लोग बाहर से सुन रहे हैं जो उनके मुख्तलिफ जगहों में, आप दुनिया में जिस मुल्क में भी रहते हैं और अगर आप वहां के एक अच्छे शहरी हैं, आप एक इस्लाम का बेहतरीन नमूना बन के जीते हैं, आप अपने इस्लाम पे अमल करते हैं, वो लोग कभी आपको टॉर्चर नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम किसी गैर मुस्लिम पे भी जुल्म और ज्यादती का सबक नहीं देता। टैक्स नहीं चोरी करना, झूठी एड नहीं लेनी, एक एक ने चार चार शादियां करके लड़कियों को मुल्कों में नहीं बुलाना। इसके बाद अगर हमें इस्लाम के नाम पे किसी मुल्क पे कोई पाबंदी लगती है, नमाज नहीं पढ़ सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, पर्दा नहीं कर सकते, तो इस आयत को आज से याद कीजिए, वाला नबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफ, सच्चाई के साथ, अपने दीन के ऊपर यकीन रखते हुए। ये मुल्क, ये दुनिया अल्लाह का है, लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्थ। एग्रेशन से बचे बगैर, रिएक्शन नहीं शो करना, नारे नहीं लगाने, मुर्दाबाद नहीं कहना, अपना काम करते जाए। मैं सोचती हूँ ये गज का टुकड़ा आज हम मुसलमानों के लिए आजमाइश बनी पड़ी है। कभी हम मुसलमान इस मुसीबत को मुसीबत क्यों नहीं समझते कि हमारे ऊपर ये अब बैंस लगने लग गए कि आप पर्दा नहीं कर सकते, आप निकाब नहीं कर सकते। आप देखिए, एक औरत है, उसकी टांगे खुली हैं, क्या ये डिस्ट्रक्शन नहीं होती बहरालों को? बड़े बड़े बिल बोर्ड में जो तस्वीरें लगती हैं, क्या ये आपके मुल्क के अंदर गंदगी और पोल्यूशन नहीं पैदा करती? और अगर एक औरत बाहया लिबास पहनकर बाहर निकलती और वो कुछ नहीं आपको कहती, उसने आंखों पे पर्दा नहीं डाला, वो आंखें उसकी खुली हैं, कान भी खुले, क्या उसका ये थोड़ा सा मामला आपको तकलीफ क्यों दे रहा है? ये आजमाइश है, ये आपकी आजमाइश है। मैं आप सबको दिल खोल के, और अगर मैंने ये बात ना कही तो मैंने हक नहीं अदा किया यहां आने का। मैं आपको लोरियां दे के चली जाऊं और फजाइल और अमाल और ऐसी ऐसी खूबियां और जन्नत की खुशबुएं दिखा के चली जाऊं, मैं कल अल्लाह क्या मुजरिम होंगी? आपके मुल्क में जिस चीज पे पाबंदी है, ये आपकी आजमाइश है। वल नबलू वन कुम्बिशन मिनल खौफी व नक्स मिनल अम्वाल वल जू, क्यों कि आप अपने दीन पर कितना कायम रहते हैं। क्या हम छोड़ देंगे गैरों के लिए? अगले तक पहुंचिए, आप प्लेटफॉर्म्स बनाइए, आप बड़े बड़े फोरम्स में जाइए, आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड्स हैं, जहां तक आप अपने मुस्लिम राइट्स, रिलीजियस राइट पे ले जा सकते हैं, अदल से बात करें, स्माइली फेसेस से बात करें। गुस्से की बात नहीं है, चिढ़ने की बात नहीं है, नेगेटिविटी की बात नहीं है, बी पॉजिटिव। आप कहते हैं बी पॉजिटिव, ब्लड जो होता है वो सबको लगता है। अगर हम मुसलमान इस वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड करें, वल्ला ही दुनिया की कोई मुमलिकत आपके मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकती। अमेरिका में तो इतनी सख्ती है इस बात पे, किसी के रिलीजियस हक को अगर कोई दबा दे, उसको जेल में डाल देंगे। बस एक मर्द है, नमाज पढ़ता है, मुसलमान है, उसकी जुमे की नमाज है, और उसके जॉब वाला या जो भी बॉस होता है, अगर उसको जुमे के लिए जाने की इजाजत नहीं देता, तो वो एम्प्लॉय जो है वो उस अपने बॉस को कोर्ट में लेके जा सकता है, और जीतेगा कौन? मुस्लिम जीतेगा। वाई? दिस इज माई रिलीजियस राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पूरी दुनिया का स्लोगन है आज। आज कर्टसी का दौर है। मैं कहती हूँ वो तो गुजर गए, फिरौनियत के दौर और नमरूदियत के दौर, के जहां वो बेगार बनाकर आपको बड़े बड़े मुश्किल कामों में डालते थे। आज बहुत कर्टसी है, ये नाइस लोग हैं, ये अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? हम मुसलमानों को सजा मिल रही है, ये हमारी आजमाइश है। हमने अल्लाह के साथ खयानते की, अल्लाह ने हम पे लोगों को मुसल्लत कर दिया। तो ना डरना है और ना डराना है, काम वो करना है जो अल्लाह ने कहा है, ना किसी को आपने खौफजदा करना है। हाँ भाई, इट्स फाइन, ठीक है, इट्स ओके। तो बहरहाल आपको मुझे लगता है कि बात समझ आ गई है। इस आजमाइश को कैसे पूरा करेंगे? अल्लाह के हुक्म पर अमल करके, और अपना बाकी मामलात में अल्लाह से रवैया देखिए। बस आपको नमाज पढ़ने पे तो कोई नहीं रोकता, तो एक लड़की है मिसाल है, वो नमाज ही नहीं पढ़ती, तो फिर अल्लाह ने सजा दिलाई ना, अब तुम नमाज नहीं पढ़ती, लेकिन मैं अब तुम्हें हिजाब भी नहीं करने दूंगा, तुम अपनी नमाजें ठीक कर लो, मैं हिजाब की पाबंदियां उठवा दूंगा। समझ गए ना, असल तो पीछे अल्लाह का हाथ है। तो अपना अल्लाह ताला के साथ मामला दुरुस्त करते जाएंगे, इंशाल्लाह बात दुरुस्त हो जाएगी।